Om Shanti and good evening. Good evening, all of you.
Good evening.
Thank you so much. अभी हम बहुत सुंदर साइलेंस की एक जर्नी कर हम लोग आ रहे हैं और साइलेंस के बाद फिर अगर आवाज में आने को कहा जाए तो कई बारी मुश्किल होती है. मन करता है कि उसी साइलेंस की अनुभूति हम लोग करते रहे. तो अगले आधे पौने घंटे की जो हमारी यात्रा होगी वो एक बहुत अनोखी यात्रा होगी. आप लोग कल से सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार से आपको अपने वक्तव्य, अपने पर्सपेक्टिव्स पुट कर रहे हैं हमारे स्पीकर्स. लेकिन एक स्पीकर, एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा. उसने कहा कि सर एक बात बताइए, जब हम यहां पर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि सब कुछ हमसे हो जाएगा, लेकिन जब कार्य व्यवहार पर जाते हैं तो हमको वही कार्य करने में बहुत मुश्किल होती है और हम उसको कई बार नहीं कर पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो एक बहुत सुंदर बात आपको सुनाता हूं कि एक बार एक संत थे, वो नदी के किनारे बैठे हुए थे और देख रहे थे नदी के बहाव को. तो कुछ लोग उनके पास आए और उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नदी के कंप्लीटली बह जाने का इंतजार कर रहा हूं. तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा मैं नदी को पार करना चाहता हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि पानी ये कब पूरा का पूरा बह जाए. तो दूसरा व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ. उन्होंने कहा महात्मा जी ऐसे थोड़े ही ना होता है, पानी तो बहता ही रहेगा, नदी तो बहती रहेगी, ऐसा कोई समय थोड़ी ना आएगा कि पानी पूरा का पूरा बह जाए, ऐसा नहीं हो सकता. तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं क्या करूं, मैंने तो ये सारी बातें तुम लोगों से ही सीखी हैं, तुम भी तो जिंदगी में सारी परेशानियों को, सारी समस्याओं को खत्म होने का इंतजार करते रहते हो. तुम सोचते हो कि एक ऐसा दिन होगा कि जब मेरा सारा कार्य खत्म हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा, तब मैं परमात्मा को याद करूंगा और तब मैं अपने जीवन के अंदर अच्छी बातों को धारण करूंगा. तो मैं तुमको यही बताना चाहता हूं कि ऐसा समय हमारे जीवन में कभी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला. हमारे जीवन की ब्यूटी ही ये है कि जीवन की धारा कभी ऊंची कभी नीची, कभी तूफान कभी सिंपल कभी बड़ी रिलैक्सिंग, वो चलती रहती है. लेकिन उस सिचुएशंस के अंदर, उन परिस्थितियों के अंदर हम अपनी मनोस्थिति को इतना पावरफुल बनाएं, इतना एनर्जेटिक बनाएं कि हमारी जिंदगी की यात्रा बहुत सुखद हो जाए. इससे पहले कि मैं अपने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स, हार्मोनाइजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आपके सामने रखूं, मैं इस ईश्वरीय ज्ञान की केवल चार बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं. और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, अगर हम केवल इन चार बातों को अपने जीवन में धारण कर लें, अगर अपने जीवन के अंदर इनको मान्यता दें, इनको इंपॉर्टेंस दें, तो हमारा जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाएगा. कोई ऐसी ताकत दुनिया की नहीं है परमात्मा शक्ति के साथ, केवल इन चार बातों को हमें ध्यान रखना है. एक समय की बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति था, तो उसके बच्चे थे, वो उससे कुछ कुछ मांगते रहते थे. वो कहते थे पापा हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में ये करना चाहते हैं. वो कहता बेटा ऐसा करो, अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करो. लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसने उन सबको बुलाया और उसने कहा कि जीवन की चार बातें मैं तुम्हें आज देता हूं. तो उन्होंने कहा आप हमें दीजिए. उन्होंने कहा इन चार बातों को अगर तुम अपने साथ जीवन में सदा रखोगे तो तुमको जीवन में सुख की, शांति की और सफलता की अनुभूति सदा होगी. तो बच्चे, चारों बच्चे सामने खड़े हो गए. उसने कहा अपना पहला हाथ आगे लाओ. उसने बहुत सुंदर एक कागज पर बात लिखकर उनको दी और कहा अपनी मुट्ठी के अंदर इसको बंद करो. बच्चों ने उसे लिया और उसको कहा कि अच्छा खोलो अब इसके अंदर क्या लिखा है. तो पहले बच्चे ने उसको खोला तो उसके अंदर लिखा था समय का सदुपयोग. तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बच्चों अपने जीवन में तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान जो वस्तु इस वक्त है वो है तुम्हारा समय. एक एक क्षण तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या डिसीजन लेते हो, क्या करना चाहते हो, वह सब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है. तो अपने जीवन में सदा समय का सदुपयोग करना, जीवन में एक एक क्षण का उपयोग करना, हर व्यक्ति का कल्याण करना, अपने जीवन में सदा मेहनत करना और समय को कभी भी नष्ट मत जाने देना, किसी भी व्यर्थ बात के अंदर उसको वेस्ट मत करना, तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी, जीवन में तुम सदा सुख और शांति की अनुभूति करोगे। तो दूसरा बच्चा उससे बोला, पर पिताजी अगर हम समय का सदुपयोग करें और फिर भी हमको जीवन में खुशी शांति और सफलता ना आए तो हमें उस समय क्या करना है। तो उसने कहा अपना दूसरा हाथ आगे लाओ। उसने एक और बात उनको लिख कर दी और उससे कहा कि मुट्ठी में रख लो इसको और जब जरूरत हो इसे खोलना। तो उस बच्चे ने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था धैर्यता, पेशेंस। उसने कहा कि जब जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए भी तुमको सफलता ना आए तो पेशेंस, धैर्यता का गुण सदा जीवन में धारण करना। अगर तुम्हारे जीवन में धैर्यता है, तुम्हारे जीवन में एक ठहराव है, तो धैर्यता के साथ साथ समय का फिर सदुपयोग करोगे तो सफलता तुम्हारे पास वापस लौटकर जरूर आएगी। अपने कर्म में सदा ध्यान रखना, अच्छे कर्म करते रहना। तो तीसरा बच्चा बोला, और तीसरी बात हमको अपने जीवन में क्या ध्यान रखनी है। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा देखो जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति तुमको मिलते हैं, कभी कभी ऊंच नीच बात होती है, लेकिन जीवन में हम लोग अपने मन में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव भावना, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने मन के अंदर रख लेते हैं और वही बात हमको हमारे जीवन में कष्ट का कारण बन जाती है। हमारे जीवन में लड़ाई की बातें कोई बड़ी बड़ी नहीं होती, आप सब इस बात के साक्षी हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर हमारे जीवन में एक दूसरे से टकराव, एक दूसरे से आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इसके लिए मैं तुमको तुम्हारे जीवन का तीसरा रत्न देता हूं। उसने कहा अपना हाथ आगे लाओ और उसको लिखकर तीसरी बात बहुत सुंदर लिखकर दी। जब उस बच्चे ने उसको खोलकर पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था क्षमा का गुण। उसने कहा कि जीवन में सदा क्षमाशील रहना। कोई कैसा भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए, जिसने तुम्हारे लिए कितना भी बुरा किया हुआ हो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वो सदा सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन में सबसे ऊंचा क्षमा का गुण किसके पास है? परमपिता परमात्मा के पास है। हम कहते हैं ना परमात्मा के पास जाएंगे कि हमें क्षमा करना, वो कहेगा ठीक है मैं तुमको क्षमा करता हूं लेकिन आगे ऐसा मत करना। तो अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को अपने मन में ना धारण करके, है ना, कई बार क्या करते हैं अपने मन में बोझा धारण कर लेते हैं, अपने मन में दूसरे व्यक्ति के लिए नेगेटिविटी ले आते हैं, ऐसी बातों को अपने मन में कभी नहीं ढोना। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऐसी नेगेटिव बातों को रखते हैं तो किसी की नेगेटिव बात पहले हमें परेशान करती है, दूसरे व्यक्ति को करती है? आप लोग बताइए, सभी किसको करेगी बताइए? हमें करती है, नेचुरल है ना। आप देखो जो कूड़ा और जो नेगेटिविटी हम अपने मन में धारण कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो सबसे पहले वो परेशान किसको करेगी? वो मुझे याद आती है और उसकी नेगेटिव भावना जो है वो सबसे पहले मुझे परेशान करती है। तो उसने कहा कि सदा जीवन में क्षमाशील रखना, क्योंकि हम अपने जीवन में क्षमा दूसरे व्यक्ति को नहीं करते, हम जीवन में जब दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम अपने लिए शांति ले लेते हैं, परमात्मा हमको शांति और सुख का वर्षा उस वक्त दे देता है। तो क्षमाशील अपने जीवन में सदा रहना। और चौथी बात उसने बोली, उसने कहा बच्चों ये चौथी बात तुम अभी अपने जीवन में मत खोलना, ये जो मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं इसको अपने जीवन में अभी मत खोलना, इस पर्ची को। जब मैं शरीर त्याग लूं और जब मेरी चिता का अंत कर तुम वापस घर पर आओगे तब इस पर्ची को खोलना। जब उस व्यक्ति का देहांत हुआ तो उससे अंतिम इच्छा उससे पहले पूछी गई तो उसने कहा कि मेरी केवल एक इच्छा है कि जब मुझे जलाया जाए तो मेरे पास एक मेरी मां की दी हुई बहुत पुरानी जुराब है, उस जुराब को पहनाकर मेरे शरीर को जला देना। तो जब उसका देहांत हुआ तो उसके बच्चों ने उसको पुरानी जुराब पहनाई और उसकी चिता में जब अग्नि देने गए तो सारे साधु संत महात्मा जो वहां पर इकट्ठे थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमारे पिता की इच्छा थी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई भी पुरानी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये पुरानी जराब भी नहीं ले जा सकते, इसको उतारिए और फिर चिता को अग्नि दीजिए। तो बच्चे मायूस हो गए लेकिन जैसे शास्त्रों ने कहा था उसकी चिता का अंत कर उस जुराब को उतार कर साइड में रखा और घर पर आए। जब वो घर पर आए तो उनको याद आई कि पुरानी पर्ची हमारे पिता ने हमें दी थी, उसको हम खोल कर देखते हैं। तो उन्होंने उस पर्ची को खोल कर देखा, उस पर बहुत सुंदर बात लिखी थी। उसने कहा कि बच्चों तुमने देखा होगा कि जब मैं इस दुनिया से गया तो मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे धन, मेरी दौलत को तो छोड़ दो, मैं अपने साथ एक पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पाया। और जो मैं पुरानी जुराब भी अपने साथ नहीं ले जा पाया, इसलिए अपने जिंदगी में चौथी बात जो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सदा अपने जीवन में वैराग्य का गुण सदा धारण करना। कि आज तुम इस दुनिया के अंदर हो, लेकिन कल जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम अपने साथ अपनी धन, अपनी दौलत, अपने और कुछ शौहरत नहीं लेकर जाते, केवल हम आत्मा की एनर्जी, आत्मा के सुकर्म, हमारी आत्मिक एनर्जी ही, हमारे संस्कार ही हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहां पर जब हम एकत्रित हुए हैं तो हम किसको एनर्जाइज करने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने शरीर को या अपनी आत्मा को? चलो अच्छी बात है ना कि हम इतने बिजी डॉक्टर्स को अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा समय, लिटिल टाइम तो हमें अपनी आत्मा की एनर्जी के लिए भी तो मिला है ना। तो स्पिरिचुअली हमने आत्मा की अंडरस्टैंडिंग को जाना, प्रैक्टिकली हमने उसको समझा, लेकिन कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि साइंटिफिक रूप से हम आत्मा को कैसे माने, हम क्यों माने? क्या साइंस हमको आत्मा के बारे में, आत्मा के जो विभिन्न डिविजन्स बताए गए हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उनके बारे में, परमात्मा के बारे में और हमारी कार्मिक फिलॉसफी के बारे में हमको कोई एविडेंस देती है? तो हम बहुत सुंदर यात्रा पर, प्रैक्टिकल साइंटिफिक यात्रा पर चलेंगे जो आपके जहन में आपको बहुत प्रैक्टिकल रूप से अप्रूव और अपील करेगी। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो साइंस को बहुत मान्यता नहीं देते, और साइंटिफिक लोग कहते हैं कि हम लोग कर्म योगी हैं, हम केवल कर्म पर विश्वास करते हैं, हम लोग अध्यात्म पर विश्वास नहीं करते। लेकिन इस यात्रा के अंदर हम भूल जाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर नॉट एंटेगोनाइजिंग ईच अदर, दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। साइंस के बिना स्पिरिचुअलिटी अंधी है और स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस जो है वो लंगड़े व्यक्ति की तरह है। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब जब हम ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो चलिए, जैसे हम यात्रा पर गए थे, हम फिर अपने एमबीबीएस कोर्स की तरफ चलते हैं। आप सभी लोगों ने अपने एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन तो लिया होगा। जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं तो एमबीबीएस की पढ़ाई के अंदर जो पहला सब्जेक्ट होता है, पहला ईयर होता है, पहला प्रोफेशनल होता है, उसके अंदर हमको क्या पढ़ाया जाता है? उसके अंदर हमको एनाटॉमी, हमको फिजियोलॉजी और हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री किसकी पढ़ाई जाती है बताइए? किसकी पढ़ाई जाती है बताइए? बॉडी की पढ़ाई जाती है। आपने बहुत सुंदर रूप से मेरी बात को आसानी से कह दिया कि वी आर मेड टू लर्न अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लेकिन अभी 5 मिनट पहले आप लोग बोल रहे थे कि इस बॉडी को नियंत्रित करने वाला कौन है, कौन है बताइए? हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी संस्कार है। अभी हमने क्लियरली देखा कि शरीर जब खत्म हो जाता है तो शरीर को तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी रहती है। तो हम बॉडी की एनाटॉमी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ट्रीटमेंट भी हम किसका सीखते हैं? ट्रीटमेंट भी हम किसका सीखते हैं? बॉडी का सीखते हैं। कोई व्यक्ति आया तो हम उसको बॉडी की इलनेस को डायग्नोस करके उसको बॉडी की दवाई दे देते हैं। कोई और व्यक्ति आया, उसकी इलनेस को डायग्नोस करके हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बॉडी से पहले हमारी आत्मा, हमारा मन बीमार होता है। तो क्या हम लोग एनाटॉमी ऑफ बीइंग भी पढ़ सकते हैं? जब हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं तो ह्यूमन तो बॉडी है, बीइंग हमारी साइकी, हमारी सोल, हमारी स्पिरिट को कहा जाता है। तो व्हाट इज द एविडेंस दैट फ्रॉम साइंस वी हैव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग? मैं क्यों मानूं? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं साइंटिफिक रूप से इस बात को क्यों मानूं कि मेरी आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है? इसको साइंस 4 रूप से हमारे सामने इसकी एविडेंस रखती है। आप देखेंगे एनाटमी ऑफ बीइंग यानी कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम नेचुरल रूप से बीइंग भी कहते हैं, जिसको हम साइकी भी कह सकते हैं, जिसको हम स्पिरिट भी कह सकते हैं, या जिसको हम आध्यात्मिक रूप से सोल भी कह सकते हैं, आज हम इसकी साइंटिफिक एविडेंस को स्टडी करेंगे। साइंटिफिक एविडेंस बाय लॉजिक हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस बाय स्टोरीज ऑफ री इंकारनेशन बाय रीबर्थ इन्वेस्टिगेट करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस बाय आउट ऑफ द बॉडी एंड नियर एंड ऑफ लाइफ हम लोग स्टडी करेंगे, एंड बाय इलेक्ट्रोड एंड एमआरआई स्टडीज हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। 1992 जब मैं एनाटमी की पढ़ाई पढ़ रहा था अपने फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल के अंदर, तो मैं अपने प्रोफेसर से पूछता था कि सर मैं इस बॉडी को डिसेक्ट कर रहा हूं, मैं इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ता हूं, तो इसकी बॉडी के अंदर लिखा है दिस पर्सन हैज डाइड अ नेचुरल डेथ। मुझे एक बात बताइए कि इस व्यक्ति की आंखें हैं ये देखता नहीं है, इस व्यक्ति का हार्ट है वो धड़कता नहीं है, इस व्यक्ति के पांव हैं ये व्यक्ति चलता नहीं है, इस व्यक्ति का दिमाग है ये सोच नहीं रहा, इस व्यक्ति के लंग्स हैं ये सांस नहीं ले रहा, ऐसा क्या चीज इस व्यक्ति के अंदर नहीं है जो ये व्यक्ति डेड हो जाता है। तो मेरे प्रोफेसर बोलते थे कि बेटा इस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर जान नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं है। आप देखेंगे जैसे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे बीएमडब्ल्यू हो, चाहे मारुति हो, लेकिन गाड़ी कब चलती है, जब उसके अंदर कौन बैठता है बताइए सभी लोग, ड्राइवर बैठता है। गाड़ी के प्राण, गाड़ी के अंदर एनर्जी तब आती है जब उसके अंदर ड्राइवर बैठ जाता है, और जैसे ही ड्राइवर बैठता है उसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है, उसका गियर लगता है, उसका म्यूजिक बजता है, उसका हॉर्न बजता है, वो गाड़ी एक्सलरेट करती है, जब चाहे तो रोक देते हैं, और गाड़ी की सारी जो प्रणाली है वो जीवंत हो जाती है। तो बाय लॉजिक हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, हम कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड इज सो सिक, ही इज इन एक्स इन हिज टर्मिनल स्टेट, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तो हम ये नहीं कहते कि ये मिस्टर एक्स वाई जेड की बॉडी पड़ी है, हम कहते हैं इस डेड बॉडी को आप ले जाइए, इसको जला दीजिए या इसको दफना दीजिए। एग्रीड और नॉट बताइए, एग्रीड। That means जो नाम होता है वो केवल बॉडी का होता है, डिसेक्शन केवल बॉडी की होती है, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है, एक कोई एनर्जी जो उसको उसकी फंक्शनैलिटी को प्रैक्टिकली कार्यान्वित करती है, उसको हम नाम नहीं देते। लेकिन हमारा लॉजिक ये जरूर मानता है कि हाँ कोई शक्ति है जो उसकी एनर्जी उसके अंदर आके हमारे शरीर को कार्यान्वित करती है। लेट इट बी सोल, लेट इट बी साइकी, लेट इट बी गॉड स्पॉट, लेट इट बी कॉन्शियसनेस, चाहे कोई भी चीज है, लेकिन हमारा लॉजिक ये अपील करता है कि हां कोई एनर्जी है। सेकेंड एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो आती है इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज अ इनडायरेक्ट बट अ स्ट्रांग एविडेंस जो आज साइंटिस्ट एक्सेप्ट करने लगे हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इस चीज की रखूंगा। जो लेटेस्ट एविडेंस बाय प्रोफेसर आयन स्टीवेंसन, जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका के अंदर, उन्होंने दिखाया है कि कई बच्चों जब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर लेके गए, तो जिन बच्चों को बहुत सिवियर बर्थ मार्क्स होते हैं, बहुत डार्क स्पॉट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर बर्थ इंजरीज होती हैं, उनके अंदर दिखाया गया ऑलमोस्ट 35% ऑफ द चिल्ड्रेन हु क्लेम टू रिमेंबर प्रीवियस लाइफ दे हैव बर्थ मार्क्स और बर्थ डिफेक्ट्स, एंड मोर देन 210 सच चिल्ड्रेन हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। जब उनको रिग्रेसिव एनर्जी के अंदर ले जाकर उनके माइंड को स्टडी किया गया, तो उसके अंदर देखा गया कि जिस प्रकार का बर्थ मार्क उस बच्चे को होता है, उस प्रकार की मेमोरीज उस व्यक्ति को, उस इंजरी की मेमोरीज वो पिछले जन्म के अंदर लेकर उसकी डेथ हुई थी, और वो नेक्स्ट जन्म के अंदर उसको एक बर्थ मार्क के रूप में प्रकट होती है। बट दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एविडेंस। दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस जो प्रोफेसर आयन स्टीवेंसन ने बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, जो हम लोग देखते भी हैं, फोबियाज ऑफ पास्ट लाइफ। अब कई बारी हम लोग देखते हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर एग्जाम्पल एक माता पिता जो है वो बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं या बहुत अच्छे स्विमर्स हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत स्ट्रांगली ट्रेन करते हैं कि ये बच्चा भी नेचुरली क्या बनेगा, एक अच्छा स्विमर बनेगा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाता है, उसको पूल के पास लाया जाता है, तो वो स्विमर की तो बात छोड़ दीजिए, उसको पानी से भी बहुत भयंकर क्या हो जाता है, फोबिया हो जाता है. वन ऑफ दीज एग्जाम्पल इज ऑफ अ श्रीलंकन चाइल्ड विच वॉज वेरी नाइसली इन्वेस्टिगेटेड बाय प्रोफेसर आयन स्टीवनसन व्हेन द चाइल्ड्स पेरेंट्स बोथ वर नेशनल स्विमर्स बट दिस चाइल्ड हैज अ सिग्निफिकेंट फोबिया ऑफ वॉटर. इतना फोबिया कि जब उसको पानी के पास लाया जाता था तो वो पानी से दूर भाग जाता था. तो जब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर ले जाकर उसके माइंड को स्टडी किया गया तो प्रोफेसर आयन स्टीवनसन ने देखा कि पिछले जन्म के अंदर उसकी जो डेथ हुई थी उसका जो मेमोरीज आ रही थी वो हुई थी कि बाढ़ के अंदर उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने अपने प्राणों को त्याग दिया था. जब एक्सट्रीम वॉटर के अंदर उसने अपने प्राणों को त्यागा था तो नेक्स्ट जन जब उसने लिया तो नेचुरली उसको कौन सा फोबिया मिला, फोबिया ऑफ वॉटर उस बच्चे को मिला. दैट मीन्स जब उस बच्चे की डेथ हुई, उस व्यक्ति की डेथ पिछले जन्म में हुई, उसकी बॉडी को तो खत्म कर दिया लेकिन कोई एनर्जी है जो उस मेमोरी को लेकर इस जन्म के अंदर उस मेमोरी को लेकर आती है. हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं. पॉजिटिव एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो कई बच्चों के माता पिता हम टेलीविजन पर भी देखेंगे, दे आर जीनियस. वो 10-12 साल के अंदर ही IIT की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं. वो सारी मेमोरीज जो हैं, अभी हम देखेंगे ना, बड़ा जीनियस चाइल्ड का एक इंटरव्यू आ रहा था जी के अंदर भी, जो सारे क्वेश्चंस को बड़ा मैजिकली आंसर कर रहा था. इतना ट्रेंड नहीं है लेकिन इट वॉज कमिंग टू हिम नेचुरली. थर्ड थिंग हम देखते हैं कि कई लोग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा प्ले करते हैं. हाउ डज इट कम, दैट मीन्स देर इज अ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी जो पुराने संस्कारों को, पुराने जन्मों के एनर्जी को, संस्कारों को लेकर इस बारी फिर बर्थ लेती है. दैट अगेन गिव्स अस अ स्ट्रांग एविडेंस दैट यस देयर इज अ एंटिटी इन अवर बॉडी जो हमारे संस्कारों को लेकर अगले जन्म के अंदर जाती है. हम उसको नाम अभी भी नहीं देते लेकिन स्ट्रांग सजेशन साइंस के द्वारा हमारे पास आ जाता है. और तीसरा और एक और एविडेंस आता है बाय, दिस इज अ स्टोरी बाय डॉक्टर जेम्स बी डकर इन हिज ब्यूटिफुल बुक लाइफ बिफोर लाइफ इन विच ही इन्वेस्टिगेटेड चिल्ड्रेन्स मेमोरी ऑफ प्रीवियस लाइफ. इन्होंने बच्चों की पुराने जन्मों की मेमोरीज को इन्वेस्टिगेट किया. ब्यूटिफुल बुक, ई बुक विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. यू मस्ट रीड दिस बुक लाइफ बिफोर लाइफ. इसमें एक माँ अपने बच्चे का, जिसका बच्चे का नाम था सैम टेलर, उसका डायपर चेंज कर रही थी. और जब बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी तो वो छोटा सा बच्चा तुतलाता हुआ अपनी माँ को बोला कि जब तुम मेरी उम्र की थी तो मैं तुम्हारे डायपर को चेंज किया करता था. द मदर वॉज टेकन अबैक. इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बात कैसे बोल सकता है. उसने अपने पेरेंटल पिक्चर जब उसके सामने रखी तो वो बच्चा अपने नाना जी को बड़ी कैटेगोरिकली उसके अंदर से पिकअप कर पाता था, उनकी सारी आदतों को, उनके सारे बिलोंगिंग्स को बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता था. ना केवल ये, उनके अकाउंट्स को, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी जब वो देखता था तो वो उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता था. दिस स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यस देयर इज अ एंटिटी दैट नेवर डाइज एंड प्रोबेबली इट इज द बॉडी दैट इज लिविंग, दैट इज द बॉडी दैट डाइज. That this is a very strong second evidence that comes that हाँ हमारे अंदर कोई energy है जो हमारे शरीर को चलाती है. हम इसको अभी भी नाम नहीं देते. Third evidence जो हमारे सामने आती है वो है out of the body and near end of life experiences. ये evidence बहुत सुंदर evidence है and this evidence has come lately. नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन वन ऑफ दीज साइंटिस्ट, दिस इज डॉक्टर एविन अलेक्जेंडर and he is a famous Harvard neurosurgeon. This Harvard neurosurgeon, जो neurosurgery करते थे, इनको जब भी आत्मा के बारे में बताया जाता था, he never used to believe it. लेकिन one time, what happened was, he suffered from severe meningitis, and he was in coma for almost 7 days, deep coma. And in this coma, he gives, after coming out of this coma, he gives the most credible account ever for that confirms the presence of afterlife, जिसके इन्होंने Heaven is Real के नाम से एक book के रूप में publish किया. During his coma, he experienced a vivid journey into what is called as afterlife. इन्होंने ये describe किया कि जब मैं deep coma के अंदर था, I could actually visualize what is happening to my body. आप सब लोग मेरे बॉडी को ये इंजेक्शंस देते थे, डॉक्टर्स मेरे ऊपर ये ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्या क्या एकदम एक्साइटमेंट होता था, क्या क्या चीजें जब मैं कोलैप्स कर रहा होता था मुझे किस तरह रिससिटेट किया जाता था. एंड नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस ऑफ आफ्टर लाइफ वॉज सो रियल, देर वॉज नो लैंग्वेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम. द ओनली फैब्रिक ऑफ आफ्टर लाइफ वॉज प्योर लव. अभी साइलेंस के अंदर जब हम एक्सपीरियंस जा रहे थे ना, जब एक्सपीरियंस कर रहे थे तो वहां पे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं था, जैसे दीदी ने आपको कराया, शिवानी बहन ने. ओनली अवर स्वीट साइलेंस एंड लव फॉर गॉड इज वॉट इज कनेक्शन एंड बेसिस ऑफ मेडिटेशन. तो इन्होंने डिस्क्राइब किया द फैब्रिक ऑफ आफ्टर लाइफ वॉज प्योर लव एंड द ओनली कम्युनिकेशन वॉज टेलीपैथिक. आपको एविडेंस उन्होंने बताया, जब हम टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं आफ्टर लाइफ के अंदर, तो हम लोग एक दूसरे से इजिली बिना बोले अपना मैसेज दे सकते हैं. एंड ही वेंट अहेड एंड सेड that this was the most credible account ever, that a person who is practically brain dead at that particular time, jis vyakti ko kuch hosh nahi hai, jisko outer stimulus nahi ja raha, lekin he was able to recollect everything that was happening to his body. How can this happen? This can happen only when there is an entity in our body which can exist outside the body also. Which can exist outside the body also. And he said, yes, definitely science has its limitation, ki ek energy hai jo hamari body ko control karti hai, hamari body ki sari functionality ko control karti hai, aur uske andar sari recordings ho sakti hai. Our body is only a limited expression of that inner power. And that is what is known as soul. And now numerous evidence have poured in, and aap dekhenge near end of life and out of the body experiences are now accepted as a strong scientific evidence for existence of a soul. Fourth evidence jo hamare samne aati hai, wo aati hai God spot in brain. This was an experiment of magnetic resonance imaging carried out in 15 nuns, in which in deep meditative state their brains were illuminated. And by elimination they saw that the most illuminated part of the brain, jab deep meditation mein hote hain to focus sari dye ka aur MRI ka jo illumination unhone focus kiya wo aaya just adjacent to the pineal gland, just adjacent to the pineal gland in front of the hypothalamo hypophyseal fossa. Phir scientists ne jab isko further investigate kiya to unhone surprisingly dekha ki history wise also, जो फ्रेंच फिलोसफर थे रेने डेस्कार्टेस, उन्होंने डिस्क्राइब किया पिनियल ग्लैंड वॉज द सीट ऑफ सोल. दिस वॉज डिस्क्राइब डेकेड्स एंड ईयर्स बैक. एंड उन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेट किया पिनियल ग्लैंड इज द ओनली अनपेयर्ड ऑर्गन, इट इज द एनाटॉमिकल सेंटर ऑफ द ब्रेन, इट एमिट्स द मोस्ट पावरफुल ब्रेन केमिकल कॉल्ड DMT विच कैन इंड्यूस मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो हमको डीप मेडिटेटिव स्टेट्स के अंदर ले जा सकता है. एंड इट सिट्स क्लोज टू द इमोशनल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. और इसको बहुत बाय डायरेक्ट एविडेंस के द्वारा उन्होंने गॉड स्पॉट के नाम से साइंटिस्ट ने इसको टर्म किया. तो आप देखेंगे बाय लॉजिक, बाय स्टोरीज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बाय आउट ऑफ द बॉडी एंड नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड ऑल्सो बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स, it is clearly and strongly suggestive that yes, there is an entity in our body that can exist outside the body, and that is more powerful, that is called as consciousness. It is this consciousness, ye consciousness hai jo hamari body se separately exist kar sakti hai, uske outside bhi function kar sakti hai, aur hamari body iske function ko limit kar sakti hai. To aap dekhein ki naturally जब हम इस एनाटमी ऑफ दिस सोल, इस साइकी, इस कॉन्शियसनेस की एनाटमी को हम समझ लेते हैं, तो जो इस बॉडी की लिमिटेशंस हैं उनको हम उससे बाहर ले जाते हैं. दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज. दिस इज द बेसिस ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज. आप ऐसा नहीं सोचिए द मेडिटेशन दैट इज taught to you here is an imagination. No, in imagination you are just imagining. जैसे मैं आप में से किसी को बोलूं, कि आप मेरे घर को देखिए, आप देख सकते हैं नहीं? हाँ या नहीं, बताइए सभी लोग. नहीं देख सकते. लेकिन अगर मैं कहूं आप अपने घर को देखिए, आप एक सेकेंड में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. जब मैंने कहा आप मेरे घर को देखिए, यू आर इमेजिनिंग कि इनका घर ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप अपने घर को देख रहे थे तब आप रियलाइज कर रहे थे। तो मेडिटेशन इज नॉट इमेजिनेशन, मेडिटेशन इज रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, एंड दैट कैन अकर ओनली आफ्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल। तो जब हम सोल की एनाटमी को समझ लेते हैं कि सोल के तीन फैकल्टीज होते हैं, मन जो विचार ला रहा है, बहुत सिंपल है, हमें माउंट आबू जाना है, बहुत अच्छा विचार है, बुद्धि कहती है हाँ इस बारी तो जाना ही है, हर बारी से हम टालते आए हैं, इस बारी हम लोग साथ में चलेंगे। जब मन और बुद्धि ने डिसीजन लिया, आप लोगों ने कर्म के रूप में गाड़ी, एरोप्लेन या ट्रेन के अंदर बैठ के आप यहां पर आ गए, या कर्मा फलीभूत हुआ एंड आपका एक्शन रिकॉर्ड हो गया कि हम माउंट आबू पहुंच गए हैं। दिस इज हाउ अवर सोल इज फंक्शनिंग, माइंड इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। मन सोच रहा है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और जब मन और बुद्धि डिसीजन लेते हैं तब हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तब हम उसको कार्य में लाते हैं। आप देखो एवरी मोमेंट दैट वी आर लीडिंग दिस लाइफ, हमारे जीवन का हर कर्म, हमारे जीवन का हर सोच, सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हमारे मन से उत्पतित हो रहा है, हमारे मन से उसका जनरेशन हो रहा है। थॉट इज द मोस्ट पावरफुल, माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ अवर सोल। तभी हम कहते हैं कि मन को एनर्जाइज करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं हाउ टू यूज दिस माइंड पावर। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपको उससे स्पष्ट हो जाएगी कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन जब तक मन की स्टेबिलिटी ना हो तब तक हमारा कर्म फलीभूत नहीं होता। एक बारी एक यंग लड़का था, वो बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था, धीरे धीरे तीरंदाजी करते करते वो विश्व का वन ऑफ दी टॉप तीरंदाज बन गया। उसको घमंड आ गया कि मुझसे श्रेष्ठ तीरंदाज कोई नहीं है। तो एक व्यक्ति ने उसको बोला कि तुम अपने ऊपर इतना गर्व, इतना ईगो लाते हो, तुम जाओ और जाकर एक गांव के कोने के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसको जाकर हरा कर दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ हो। उसने जाकर उसको चैलेंज किया कि लोग बोलते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा, तो आप मेरा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करिए। तो उसने कहा बेटा मुझसे क्या करोगे, बट तुम इतना इंसिस्ट करते हो तो चलो आओ मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। बीच मैदान में गए, उस यंग लड़के ने अपना तीर निकाला और एक्यूरेट निशाने पर लगा दिया, फिर उसने एक और तीर निकाला और फिर उसको एक्यूरेट निशाने पर लगा दिया, और उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा आप ऐसा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो उसने भी अपना तीर निकाल के एक्यूरेट निशाना करके वैसे दिखा दिया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, आओ मेरे पीछे। तो वो उसको जाकर पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में एक कठिन सा रास्ता जा रहा था जो कि हिल रहा था और हजारों फीट खाई, गहरी नीचे खाई थी, उस पर उसे ले गया। उस लड़के के पांव कांपने लगे कि ये व्यक्ति मुझे कहां ले जा रहा है। उसने कहा घबराओ नहीं, डोंट वरी, कम इन बिटवीन, बीच में आओ। वो पसीने पोंछता हुआ बीच में आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और दोनों पहाड़ों के बीच में एक जगह एक्यूरेट निशाना लगाया और उस लड़के को बोला कि क्या तुम यहां पर निशाना लगा सकते हो? तो उस व्यक्ति ने, यंग लड़के ने अपना तीर निकाला और कांपते हुए हाथों से, पसीना आते हुए उसने अपना तीर छोड़ा, वो निशाने पर कहीं आसपास भी जाकर नहीं लगा। वो उसके चरणों में गिर गया और उस बूढ़े व्यक्ति से बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान आ गया था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उठाकर उसे अपने गले लगाया और उससे बोला कि बेटा तुमने धनुष और बाण पर तो पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द बो एंड एरो, लेकिन वो मन जो हर परिस्थिति के अंदर तुम्हें एक्यूरेट निशाना लगाने के लिए सामर्थ्य देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा उस मन पर कंट्रोल नहीं है तो जरा सा भी इंबैलेंस होता है तुम्हारा निशाना चूक गया, इसलिए तुम अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जब तक तुम अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। इसीलिए अगर हम जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको किस पर मास्टरी लानी पड़ेगी, बताइए सभी लोग, अपने मन पर मास्टरी लानी पड़ेगी। और मन को आप डांट कर या मारकर समझा सकते हैं? नहीं। बच्चे को, अगर आपका छोटा बच्चा है घर के अंदर, आप उसको दो मिनट डांटें और दो मिनट उसको तेजी से डांट कर बिठा दें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे उसको छोड़ेंगे वो क्या करेगा, कहीं फिर भाग जाएगा। लेकिन जब आप उसको प्यार से बुलाकर उसको बिजी रखते हैं तो वो आपकी सारी बातों को समझकर आपके साथ लग जाता है। दैट इज वाई हमारे यहां पर भी परमात्मा ये कहता है कि तुम्हारी आत्मा का जो मोस्ट ब्यूटिफुल फैकल्टी है मन माइंड, उसको डांटो नहीं. हे मन तू मेडिटेशन कर, हे मन तू मेडिटेशन कर, अब तू परमात्मा को याद कर, अब तुझे सबके लिए अच्छा करना है. नहीं, उसको प्यार से समझाओ कि अरे जब तू हरेक के लिए अच्छा सोचेगा, जैसे अच्छे अच्छे विचार पहले आ रहे थे ना, जब तू हरेक के लिए अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली तेरा मन, तेरी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और उसका मन उसके अंदर बिजी हो जाएगा. तो इसीलिए फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हमारे माइंड की यही कहती है कि सबसे पहले अपने मन को शांति से, प्यार से, पवित्रता से, प्योरिटी से, नॉलेज से, इससे भरपूर करो, आध्यात्मिक नॉलेज से भरपूर करो. उसको डांटो नहीं, उसको प्यार से बच्चे की तरह अपने कंट्रोल के अंदर लाओ. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल लीडिंग अ लाइफ फुल ऑफ पीस, लव एंड प्योरिटी. ये आत्मा, चाहे हम काले हैं, चाहे हम गोरे हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट और क्रीड के हैं, चाहे हम कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये कॉन्शियस एंटिटी, ये सोल एग्जिस्ट करती है. तो इस आत्मा को एनर्जाइज करना, इसको डेकोरेट करना बहुत आवश्यक है. आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं कि एक वृद्ध व्यक्ति के पास एक लेडी गई और बोली कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए. तो उसने बहुत मुस्कुराते हुए ऐसे खांसी की बात बोली और उसको गौर फरमाएगा, उसने बोला कि बेटा कभी बर्तन मांजे हैं? तो उसने कहा हां मांजे हैं, बर्तन, बर्तन साफ किए हैं. उसने कहा क्या सीखा? तो उसने कहा इसने सीखने का क्या है, बर्तन मांजे हैं मतलब बर्तन मांजे, इसमें सीखने की कोई बात ही नहीं है. तो उसने उससे पूछा, बेटा जब बर्तन को साफ करते हैं तो बाहर से ज्यादा साफ करते हैं या अंदर से ज्यादा साफ करते हैं? तो उसने कहा अंदर से ज्यादा साफ करते हैं. तो उसने कहा अब क्या सीखा? उसने कहा मैं समझ गई कि अब हम जब यहां पर आए हैं तो हम यहां पर अपने आप को अंदर से साफ करने आए हैं या बाहर से साफ करने आए हैं, बताइए. अंदर से साफ करने आए हैं. जितना जितना हमारा इनर क्लीनिंग, इनर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल होता जाएगा, साफ होता जाएगा, उतना हमारा आउटर एनवायरमेंट कैसा होगा, कैसा होगा बताइए, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा. तो सारी एनर्जी, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना पॉजिटिविटी, जितना पॉजिटिव एनर्जी हम अपने कार्य व्यवहार पर लाते जाएंगे, जितना हम हरेक के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हम शुभ संकल्प दूसरे व्यक्ति के लिए लाते जाएंगे, उतना ठहराव, उतनी शांति हमारे जीवन के अंदर आती जाएगी. एंड दैट इज वाई जब हम सेकेंड प्रोफेशनल के अंदर पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी की, उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ सोल क्या कहती है कि बच्चे अब बीमारी का जो आरंभ होता है, जब डिजीज कहते हैं, वो ये कहती है इजीनेस इन अवर लाइफ व्हेन इट गोज अवे, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो. मन से भी जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उस बीमारी का परसेप्शन हमारी बॉडी पर भी आ जाता है. अगर आपका मन खराब होगा तो उस दिन आप कार्य करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बताइए, हाँ या नहीं? नहीं करना चाहेंगे, नेचुरली नहीं. लेकिन जब मेरा मन अच्छा है तो शरीर पर बीमारी होते हुए भी मैं अपने शरीर की बीमारी को भूल के कार्य करता हूं. तो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ह्यूमन सोल यही कहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने कर्मा को, द लॉ ऑफ कर्मा को, अपने मन को बहुत पॉजिटिव और एनर्जाइज करते जाएं. एक एक कर्म को हम अपने डेली लाइफ के अंदर चेक करें कि जो कार्य, जो शब्द, जो विचार मैं ला रहा हूं, उस सोच के पहले भी हम सोच कर देखें कि क्या मेरा ये कर्म, मेरा सोच जो है, मेरे लिए और दूसरों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. एक बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं, वाल्मीकि की बात है कि वाल्मीकि एक बहुत बड़े डाकू थे, आप सब जानते हैं ना, बहुत बड़े डाकू थे. एक दिन जब वो अपने परिवार का पालन करते थे, लोगों को मार के, उनको लूट कर, एक दिन जब वो डाका डाल रहे थे तो कुछ साधु सन्यासी उनके सामने आए, तो उसने उनको पकड़ लिया और उनको बोला कि मैं तुमको मार डालूंगा और जो तुम्हारे पास दक्षिणा का है उसे मैं लूट लूंगा. तो उनमें से एक साधु ने बहुत सुंदर बात उससे बोली, उससे बोला कि आप ये सब करते किसके लिए हो? तो उसने बोला मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, मैं उनका पालन पोषण करता हूं. तो उन साधुओं ने उससे पूछा कि जो कर्म आप करते हो उनके लिए, क्या उस कर्म का भी भाग्य, उस कर्म का भी फल आपके परिवार वाले उनके आपके साथ शेयर करेंगे? तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं, पर क्यों नहीं करेंगे, मेरे परिवार वाले भी इसके साथ शेयर करेंगे, मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं. तो उसने कहा हम तुम उनसे पूछ कर आओ कि क्या तुम्हारे कर्मों का फल भी वो तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, हम यही तुम्हारी वेट करेंगे। उसने कहा तुम भाग जाओगे, मैं तुम्हें बांध कर जाता हूं। और फिर वो अपने परिवार के पास गया, उनसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर्म करता हूं, तुम्हारे लिए खाना और धन लाता हूं लोगों को लूट कर, क्या तुम जो मैं ये कर्म करता हूं इस कर्म का फल भी तुम मेरे साथ शेयर करोगे? तो वो सब सोच में पड़ गए और सोच विचार कर उनसे बोले कि नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तुम्हारे हमारे पालन पोषण करना ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन क्या कर्म करके तुम पालन पोषण करते हो इस कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो वापस आया जंगल में, उन साधुओं को छोड़कर उनके चरणों में पड़ गया और कहा कि आप ठीक बोलते थे कि मेरे कर्मों का फल तो किसको भोगना पड़ेगा, केवल मुझे भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अब तुम ये सब छोड़कर तपस्या करो, ऐसी तपस्या करो कि तुम्हारे सारे नेगेटिव कर्म जो हैं वो खत्म हो जाएं और तुम परमात्मा का अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सको। और तभी उसने इतनी घोर तपस्या की कि कोई भी चीज उसकी तपस्या को हिला नहीं सकी। तो इसी तरह जब हम अपने कार्य व्यवहार पर जाते हैं, हम सब लोग एक एक कर्म से पहले, एक एक विचार लाने से पहले, एक एक बोल बोलने से पहले हम देखें कि हमारे विचारों का, हमारे बोल का और हमारे कर्मों का फल सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, सभी बताइए किसको? हम लोगों को करना पड़ेगा। तो हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स कितने पॉजिटिव, कितने पावरफुल और कितने एनर्जेटिक होने चाहिए। और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी ऑफ सोल, जिसके अंदर हम लोग परमात्मा को याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा को विभिन्न रूप से याद करते हुए भी उसका अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, केवल हम उससे कुछ चीजों की अपने जीवन में आश रखते हैं। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि तुम मुझे इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि आज का मनुष्य परमात्मा को केवल दो कारणों से याद करता है। बताऊं दो कारण कौन से हैं? या तो हम परमात्मा को डर के कारण याद करते हैं, देख रहे हैं आजकल सब जगह नेगेटिव हो रहा है, सब जगह फियर आ गया है, क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, व्हाट विल हैपन टुमारो, एक फियर है कि सब भगवान को याद करो, कोई यज्ञ करेगा बरसात के लिए, कोई किसी देवी देवता को प्रसन्न करेगा। और दूसरा कारण परमात्मा को याद करने का होता है जरूरत के आधार पर, कि अगर मुझे कुछ जरूरत है, मैंने मन्नत मांगी तो मैं ऐसा चढ़ा दूंगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि किसी भी अच्छे और पॉजिटिव रिलेशन का आधार डर या जरूरत होता है या प्यार होता है? आप बताइए सभी लोग जोर से, प्यार होता है। तो यहां पर जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम लोग उसको डर के आधार पर याद नहीं करते, हम परमात्मा को प्यार के आधार पर याद करते हैं। जहां प्यार होता है वहां याद ऑटोमेटिकली जाती है। अगर आप यहां पर आए हैं, बच्चों को छोड़कर आए हैं, दिन में दो तीन बारी ऐसा होगा कि बच्चों का ध्यान आ जाएगा, उनको फोन आप कर लेंगे, आपको ऐसा नहीं कि आपको अलार्म की उसके अंदर जरूरत है। इसी तरह परमात्मा कहता है कि अगर तुम मुझे अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो मेरे साथ भिखारी का रिश्ता मत रखो, मेरे साथ प्यार का रिश्ता रखो, मैं तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो सदा मैं तुम्हारे लिए हूं। और ये ब्यूटीफुल रिलेशन जब हम लेकर चलते हैं ना, तो आत्मा का पिता कौन होगा? आप बताइए कौन होगा आत्मा का पिता? परम आत्मा होगा, परम शरीर नहीं होगा, कोई देव शरीर नहीं होगा, कोई महान आत्मा नहीं होगा, कोई पुण्य आत्मा नहीं होगा, कोई देव आत्मा नहीं होगा, आत्मा का पिता परम आत्मा होगा। तो जब हम परमात्मा को अपने जीवन में आने देते हैं तो जीवन के अंदर सुख और शांति का अनुभव ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है जो मैं आपके समक्ष अंत में रखना चाहूंगा कि कई साइंटिस्ट जो परमात्मा को याद नहीं करते या उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, ये उनके लिए एक ब्यूटीफुल आई ओपनर है। एक प्रोफेसर था जो परमात्मा को मानता नहीं था और स्टूडेंट से आर्ग्यू कर रहा था कि तुम्हारा परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रोफेसर ने उससे बोला कि क्या तुम परमात्मा को मानते हो? तो स्टूडेंट ने बोला कि जी बिल्कुल मैं परमात्मा को मानता हूं। उसने कहा क्या परमात्मा अच्छा है? उसने कहा हाँ परमात्मा बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट प्रोफेसर ने बोला बेटा साइंस सेज यू हैव 5 सेंसेस टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू, टेल मी हैव यू एवर सीन गॉड? उसने कहा नहीं, मैंने परमात्मा को कभी देखा नहीं है। उसने बोला, प्रोफेसर ने, हैव यू एवर फेल्ट गॉड, टेस्टेड और स्मेल्ड गॉड, और फॉर दैट मैटर डिड यू हैव एनी सेंसरी परसेप्शन ऑफ गॉड? उसने कहा नो सर, आई डिडंट हैव एनी वन ऑफ देम। तो प्रोफेसर ने कहा यू स्टिल बिलीव इन हिम? स्टूडेंट सेड यस सर, आई स्टिल बिलीव इन हिम। प्रोफेसर सेड नो सर, नो, अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल टेस्टेबल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल ऑफ साइंस, साइंस सेज योर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ना तुम देख पाते हो, ना तुम सूंघ पाते हो, ना तुम उसको समझ पाते हो, कुछ भी तुम नहीं कर पाते। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट सन? स्टूडेंट कहता है ओनली हैव माय फेथ टू बिलीव दैट यस गॉड डज एग्जिस्ट। प्रोफेसर कहता है फेथ इज द प्रॉब्लम दैट साइंस हैज, साइंस डज नॉट वर्क ऑन फेथ। एंड एवरीबडी इन द क्लास वेंट साइलेंट। स्टूडेंट थोड़ी देर बाद बोला, इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज एवर सीन प्रोफेसर्स ब्रेन? एवरीवन वाज लाफिंग। द स्टूडेंट सेड, इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज एवर हर्ड प्रोफेसर्स ब्रेन, फेल्ट, टच्ड और स्मेल्ट प्रोफेसर्स ब्रेन? नो वन अपीयर्स टू हैव डन सो सर। सो सर, अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ एम्पेरिकल स्टेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस सेज सर यू डोंट हैव एनी ब्रेन। सो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाउ डू वी ट्रस्ट योर लेक्चर्स? द प्रोफेसर गॉट द आंसर एंड द प्रोफेसर वॉज स्माइलिंग। He said, my dear son, you have to take them on faith. And student said, sir, it's our faith that links between God and man. हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ा जोड़ है ना, जो मैग्नेट का कार्य करता है, वो हमारा विश्वास और हमारा प्यार करता है। जीवन में विश्वास और प्यार ही है जो हमारे जीवन के अंदर हमको आगे बढ़ाता है। तो मैं आप सब लोगों को, क्योंकि समय कम है, मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि यहां पर जब आज आप आए हैं तो अपने मन के अंदर केवल अच्छे विचार सुनकर मत लेकर जाइए, अपने मन को रीफॉर्मेट और रीट्यून करके जाइए कि आज परिवर्तन मुझे होना है। केवल बहुत अच्छा लगा, अच्छी बातें हैं, नहीं, लेकिन चेंज को इनकलकेट करने का इससे अच्छा मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। यू विल नेवर एवर गेट मोर ब्यूटिफुल टाइम टू चेंज। एंड इफ यू थिंक दैट टुमारो यू आर गोइंग टू चेंज, टुमारो विल नेवर कम। इफ यू थिंक टुमारो यू आर गोइंग टू चेंज, नेक्स्ट ईयर यू विल बी अगेन सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू दी सेम लेक्चर्स। लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि आप इस चेंज को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और अपने मन को सुंदर बना के उसको परिवर्तित कर जरूर चाहिए। And that is what is the final clinical professional using whatever positive, whatever spirituality. Ye spirituality kevan bhajan, kirtan aur parmatma ko yaad ke liye nahi, we use it as an objective spirituality. Jab hum operate karte hain, even when I operate and do, chahe jitna bhi hari ho, lekin spirituality humko kehti hai, hamara man ekdam shant sagar ki tarah hota hai. देखिए, सागर में आगे कितनी भी लहरें हो, कितना भी तूफान हो, लेकिन डीप सागर के अंदर जाएंगे तो एकदम शांत सागर हमेशा होता है। मेडिटेशन हमको ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देती है कि आउटवर्ड टर्बुलेंस कितनी भी हो, लेकिन इनर पीस को आप, इनर एनवायरमेंट को आप हमेशा बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो क्या आप सब लोग एक नई यात्रा के लिए तैयार हैं? बताइए। ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। एनर्जी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताइए? होना चाहिए ना, बिल्कुल करना है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो चेंज कभी भी नहीं आएगा। अंत में कुछ शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एक बार ये कुम्हार था, वो कुम्हार जो है बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो उस कुम्हार ने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई और चिलम बनाकर सामने रखी। थोड़ी देर बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने उस चिलम को तोड़ दिया, जिससे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तो उसके बराबर में जो मिट्टी रखी थी वो उससे बोली कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार बोला कि मेरा मन बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए उससे बोली, ये कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुम्हार बोला, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो मिट्टी उससे बोली कि तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। तो ऐसा शीतल मन, ऐसा शीतल मन सदा बना कर जाइए, ये परमात्मा की देन है। अगर परमात्मिक एनर्जी को अपने साथ रखेंगे तो ये सुख और शांति आपके जीवन में स्वतः आती जाएगी। चलिए, दो मिनट हम लोग बहुत साइलेंस में बैठकर फिर हम अगले सेशन में जाएंगे। बहुत अलर्ट होके अच्छे पॉजिटिव संकल्प करके केवल आधे सेकंड के अंदर हम लोग यहां से नेक्स्ट सेशन में जाएंगे।